बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नाजियात आयत नंबर 1 से 40। चंद बातें सूरत के बारे में। सूरत तरतीब के अतबार से 79 यानी 79 नंबर की सूरत है। सूरत का नाम पहले ही लफ्ज़ बन नाजियात से है, उसकी तफसील वहाँ देखेंगे। इस सूरत को सूरत साहिरा, इसी सूरत में एक लफ्ज़ आ रहा है सीन अलिफ हा रा हा, साहिरा या तोअम्मा भी कहते हैं। 2 रुकू 40 आयात और 197 कलेमात हैं और 753 हरूफ हैं। सूरत नबा ही की तरह उसी दौर में नाजिल हुई और इसका मज़मून भी क़यामत और मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है। इस सूरत में भी 5 कस्में खाकर क़यामत के आने और उसके ऊपर बात की गई है। और असल बात वही है कि जो लोग नहीं मानना चाहते थे उनको यकीन दिलाया गया कि मौत आएगी, क़यामत आएगी और उसके बाद तुम्हें दोबारा एक नई दुनिया में जाना पड़ेगा। सूरत के साथ साथ कुछ चीज़ों को मज़ीद हाईलाइट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, कसम है फरिश्तों की जो डूब डूब कर जान निकालते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, और बंद आसानी से खोलने वाले हैं। वसा वहाति सबहा, और तेज़ी से तैरने वाले हैं। फसा बेकाति सबका, फिर हुक्म की तामील में दौड़ कर सबकत कर ले जाने वाले हैं। फल मुदब्बिराति अमरा, फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कामों का इंतज़ाम करने वाले हैं। इतनी कस्मों के बाद जवाब क्या है? यौम तरजुफुर राजिफ़ा, जिस रोज़ थरथराने वाली होगी। तत बौहर रादिफा, इसके पीछे एक और झटका होगा। कुलूब हुई यौम इज़्म वाजिफा, कितने दिल उस रोज़ खौफ से कांप रहे होंगे। अब सारुहा खाशिया, इनकी आंखें डर से झुकी हुई होंगी। और जब कब्रों से इस हालत में निकलेंगे तो क्या कहेंगे? यकुलूना इन्ना लमर्दूदूना फिल हाफिरा, और काफिर कहेंगे क्या हम पलटाए जाएंगे उल्टे पाँव। अज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, यानी जबकि हम बोसीदा हड्डियां बन चुके हुए होंगे। कालू तिल का इज़न कर रत उन खासिरा, बोले ये वापसी तो बड़े घाटे की होगी, कुछ भी कह लो। फ़िन्नमा ही अज़जरत उन वाहिदा, बस इस वापसी के लिए तो फ़कत एक झिड़क काफ़ी है, बस एक सूर की झिड़क पड़ेगी और तुम निकल के आ जाओगे। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, फिर वो फ़ौरन खुले मैदान में जमा हो जाएंगे। यह है वो लफ़्ज़ साहिरा जिससे सूरत का एक नाम दिया। 14 आयात में कहीं रुकने को दिल नहीं चाहा। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने फरिश्तों की उन हालतों की कसम खाई जो बड़े बड़े का दिल पिघला देती हैं, और वो क्या? वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, डूब डूब कर जान निकालने वालों की कसम। नज़ा का लफ्ज़ पीछे हम पढ़ चुके, किसी चीज़ को खींच कर निकालना। गरकन इसकी ताकीद है, गरक होने का लफ्ज़ उर्दू में हम बोलते हैं। किसी काम में पूरी कुव्वत खर्च जमा कर देना, इसको गरक कहते हैं। मुहावरे में कहा जाता है अग़रक़ुन नाज़ फ़िल क़ौस, कमान खींचने वाले ने इसके खींचने में अपनी पूरी कुव्वत खर्च की। ये कौन है? बहुत सारी तफसीर में से जो बात ज़्यादा बेहतर दिखती है कि ये उन फरिश्तों की कसम है जो इंसान की जान जिस्म से निकालते हैं, और बड़े ज़ोर से और बड़ी शिद्दत से निकालते हैं। क्योंकि लफ्ज़ नज़ा के अंदर सख्ती के साथ किसी चीज़ को खींचना आता है, और गरका जब आ गया तो और शिद्दत हो गई। इशारा मिलता है कि जिस्म के दूर दराज हिस्सों में डूब डूब कर वो जान निकालते हैं। इससे मुराद कुफार की रूहें निकालने वाले फरिश्ते ख़ास तौर पर मुराद हैं, क्योंकि जब मौत आती है तो काफिर की रूह जिस्म के अंदर छुपने लगती है, उसको निकलना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आज मेरे साथ मामला सख्त होने वाला है। फिर जब रूह छुपती है तो फरिश्ते अंदर जा कर उसके रगो रेशे में से जान निकालते हैं। ये रूह जो है हमारे जिस्म में पिरोई हुई है, ऐसी खुली बॉटल की तरह नहीं अंदर डाली हुई, बल्कि जिस्म के एक एक सेल की रूह अलग है। किसी ने अगर कभी वैक्स करवाई हो तो चंद बालों की रूह निकलती है जिसके साथ चीख मारता है जो भी इस हालत में हो, क्योंकि उसकी रूह निकलती है। ऊपर से बाल काट लें कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसकी जड़ें निकलती हैं तो वह नासी आती वर्का। हदीस में आता है कि बरहना बदन पर एक साथ 360 तलवारें चलाई जाएं, इससे भी ज़्यादा तकलीफ मौत के वक्त इंसान को होती है। एक एक बदन के हिस्से में से रूह निकलनी है। और हदीस में आता है कि सबसे पहले रूह जो है ये पाँव के रास्ते से निकलती है, पाँव, फिर टांगे ठंडी होती हैं, फिर पेट, होते होते जब रूह हंसली तक पहुंच जाती है तो यहाँ आके फिर जो इसराइल है वो रूह खींचते हैं। पीछे का काम जो ये उनकी टीम करती है। गैब के मामले हैं लेकिन बात समझ आती है। वन्नाजियाती गर्का, हर एक पे वो वक्त आने वाला है। कोई भी इस वक्त से अपने आप को अलग ना समझे, ख़ास तौर पे काफिर की मौत बड़ी शिद्दत की होती है। 500 साल बाद भी अगर उसका जायका कोई पूछे तो मरने वाले को महसूस होता है जितनी उसको उस वक्त तकलीफ है। इसके बरक्स वन्नाशितौती नश्ता, नेक इंसान की रूह आसानी से निकल जाती है। नशता, किसी चीज़ को बड़ी सहूलत से खोलना, बंद खोलने के मानों में, पानी हो या हवा हो, यदि इससे मुराद मोमिन की रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते। हदीस में आता है कि मोमिन की रूह इतने प्यार से निकल जाती है जैसे खुशबू की शीशी खुली रहे तो थोड़ी देर में खुशबू उड़ जाती है, नीचे बोतल रह जाती है। इसी तरह मौत की सूरत में जिस्म की बोतल हमारे हाथों में होती है और खुशबू वाली रूह जो है वो ऊपर चली जाती है। अल्लाह करे कि हमें भी इसी तरह की मौत आए कि मौत की सख्तियाँ ना हों। फरमाया कि जैसे किसी को खुशबू सुंघाते हुए कोई इंसान कहीं ले जाए। आप देखिए कि जब किसी को इंजेक्शन लगता है ना तो डॉक्टर्स उसको फिर बातों में लगाते हैं, माँ बच्चे को देख रही होती है, बस सुई लगी फिर ठीक हो गया। इसी तरह हम पीछे सूरत वाक्य में पढ़ चुके हैं, वरौहम वरैहान, मोमिन की रूह को ऐसे लगता है कि जैसे खुशबू दिखाते दिखाते जिस्म से निकाल दिया जाता है। और काफिर की रूह के बारे में हदीस में आता है कि जिस तरह कांटों वाली शाख के ऊपर पतला सा कपड़ा डाल दिया जाए और वो भी गीला, फिर उस कपड़े को खींचे तो क्या होगा, कहा कि उसकी धज्जियाँ बिखर जाएंगी। कहा इस तरह रूह जब निकलती है तो जिस्म की धज्जियाँ बिखर जाती हैं, माथे पे पसीना आता है मोमिन के, यानी इंतहाई तकलीफ का वक्त होता है। अब जरा इसको बच्चे की पैदाइश से जोड़ के देखें, इंसान जब दुनिया में आता है कितनी मुश्किल में होता है। कहते हैं कि माँ के साथ साथ बच्चे को भी उतनी ही तकलीफ होती है, वो भी रो रहा होता है, ज़रा कट तो उसको भी लगता है। दुनिया में आया इंसान तो मुश्किलात से, और दुनिया से जाता है तो मुश्किल से, दिल लग जाता है सिर्फ इस दुनिया में, यहाँ से जाने को दिल नहीं जाता। चाहे कोई बिस्तर पे भी पड़ा हो उसका दिल चाहता है कि बस मैं यहीं रहूं और यहाँ से हिलूँ ना, लेकिन मौत हकीकत है और आगे रहेगी। नशता कहते हैं कुएं से पानी का डोल निकालना, किसी चीज़ को नरमी और सहूलत से निकालना। और मोमिन तो पहले ही तैयार होता है। आप देखिए हम जिस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं ना, हमें उसकी तकलीफ नहीं ज़्यादा होती। मारूफ एक मुहावरा भी है ना कि अचानक चोट जो होती है बहुत ज़ोर की पड़ती है, क्योंकि ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। आपको पता है कि इंजेक्शन लगना है, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं। मोमिन तो सारी ज़िंदगी तैयारियाँ कर रहा होता है, फिर अगर उस वक्त उसको तकलीफ़ हो तो वो कैसे हो। फिर एक और वजह भी है मोमिन को कि उसकी नज़रें तो आगे लगी होती हैं। आप देखिए कि जब किसी चीज़ के बाद खैर की उम्मीद होती है ना तो हम खुशी खुशी उन तकलीफ़ों को सह लेते हैं। सफ़र कितना मुश्किल होता है, हदीस में भी सफ़र को अज़ाब की एक सूरत कहा गया, लेकिन जब वो सफ़र अपनों से मुलाकात का सफ़र हो, उसके बाद कोई खैर मिलनी हो तो खुशी खुशी वो सफ़र तय हो जाता। लेकिन कभी किसी ने कोई ऐसा सफ़र किया हो कि किसी की मैयत को देखना है, डेथ की खबर सुनने के बाद जो सफ़र होता, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे ऐसे बुरे सफ़र किसी की ज़िंदगी में ना आए, लेकिन वो चंद घंटे की फ़्लाइट दो भर हो जाती है, क्योंकि एक तो सफ़र की थकन और उसके बाद जो सुनने वाला जो देखने वाला मंजर है वो नाकाबिले बर्दाश्त। सोचे इंसान दुनिया से जाए तो क्या लेकर जाए, क्या गया, क्या किया इंसान तूने? आप कभी सोचिए इसको कि आपको कोई कहीं भेजता है बड़े अरमानों के साथ, बड़ी मोहब्बत से, बहुत सारी ख्वाहिशात ले देंगे, लेकिन आप उसको बाद में वापसी पे जब मिलें तो सत्यानाश कर चुके हों आप उन चीज़ों का। अल्लाह इंसान को दुनिया में भेजता है कितना कुछ देकर, लेकिन हम सारी ज़िंदगी खोए रहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, दुनिया में आने और उसके जाने को जहन में रखिए, तो फिर ये आयात समझ आएंगी। इसीलिए आगे फरिश्तों की एक और सिफत हमें हरकत पे मायल करती है कि वस्साबिहाति सबहा, और तेज़ी से झपटने वाले, सबहा का लफ्ज़ पीछे हम पढ़ चुके हैं, तेज़ी से तैरना, पानी में तैरना, तेज़ घोड़े का भागना, फरसुन साबिहुन कहते हैं तेज़ रफ्तार घोड़े को। इससे मुराद फरिश्ते हैं जो रूहों को लेकर आसमानों में तैरते फिरते, ये एक तफसीर है, फरिश्ते जो रूह को लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि नेक इंसान की रूह को आसमानों पे लेके जाया जाना होता है और बद इंसान की रूह को वहाँ से नीचे फेंका जाता है। तो रूह जो होती है इसका एक सफ़र होता है और ये वहाँ जाते हैं और तेज़ी से जाते हैं, ना रास्ते में कोई पहाड़ है ना कोई रुकावटें, इसलिए सीधा जाती हैं वो रूहें ऊपर आसमान पे कि चलो हम इसको लेके जाते हैं ऊपर और शायद इसको ऊपर जाने की इजाज़त मिल जाए। फसाबिकाति सबका, फिर दौड़ में सबकत करने वाले, ये कौन है? इससे मुराद पहली बात तो है कि अगर रूही के ताबून में देखे जाए तो फरिश्ते जल्दी करते हैं कि मरने वाले को उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए, उजलत जल्दी से। मोमिन की रूह को जन्नत की हवाओं और नेमतों की जगह में और काफिर की रूह को दोजख की हवाओं और अजाबों में पहुँचा देते हैं। इसी तरह फसाबिकाति सबका से एक और मुराद भी है कि वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को मानने में ज़रा सुस्ती नहीं करते, ना सिर्फ ये कि रूह को लेके जाना बल्कि हर काम जो अल्लाह ने उनको दे दिया है उसमें तेज़ी करते हैं, सुस्ती के मारे नहीं उठते, चारों ना चार वो नहीं काम करते, उनको देखकर एकदम फुर्ती का एहसास होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ये खूबी हमारे अंदर भी देखना चाहते हैं। हमारे इरादों का बहुत दखल होता है हमारे आमाल में, हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए चल पड़ते हैं और जिस काम के लिए अभी हम ढीले हैं उसके लिए कहे भी कोई तो हम नहीं चलते। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए थे तो भाग के जल्दी से चले गए, काला शौक लेके आ गया। तो जिस चीज़ में शौक होता है, आप देखिए ज़रा वॉक करें जब इंसान, और उसको किसी ऐसी जगह पहुंचना है जो 10 मिनट में बंद होने वाली है और आपका रास्ता ही तकरीबन 8-9 मिनट का है, तो आप यूँ भागते हैं कि किसी तरह मैं पहुँच जाऊँ, वो शौक होता है ना। इसीलिए अल्लाह के हुक्मों को मानने का शौक होना चाहिए। एक होता है मजबूर कर दिए जाएं, एक होता है बंदा खुद मजबूर हो जाए। मजबूर कर दिया जाना क्या, हमारे सर पे एक मुसीबत डाल दी, बस चुप करके अब करना तो पड़ेगा। एक होता है कि हमारा दिल हमें मजबूर करते है। जिसका दिल उसको मजबूर करता है ना, वो थकता नहीं है, वो हर नेकी के काम को अपने लिए एक ऑनर समझता है, एक एजाज समझता है। नेकी जो है ना मोमिन के लिए स्टैम्प की तरह होती है, तसव्वुर में लाएं कोई स्टैम्प, वो चाहते मैं जगह जगह नेकियों के स्टैम्प्स लगा दूँ, इस जगह बैठ के कोई नेकी नहीं की यहाँ भी लगा दूँ, वहाँ कर दूँ, यहाँ सजदा वहाँ सजदा, नेकी अच्छी बात। और इस तरह से वो फसाबिकाति सबका की सूरत में जहाँ तक जा सकता है, जिस काम को कर सकता है उसको करता है। और जो बंदा बस रस्म के तौर पर, आदत के तौर पर नेकियाँ करता है, फिर वो सबकत नहीं ले जाना चाहता, दुनिया की सबकत आखरत की सबकत की सूरत में दिखती है। फल मदब्बिराति अमरा, फिर हस्बे हुक्म हर काम का इंतज़ाम करने वाले। अगर पिछले हिस्से से मुराद लें तो मतलब क्या है कि फरिश्ते इस मैयत को उसके आखिरी ठिकाने पे पहुंचा देते हैं, अच्छी रूह है तो इल्लीहीन में और बुरी रूह है तो सिज्जीन में, अगली ही किसी एक सूरत में पढ़ने वाले हैं, काम ख़त्म, कब्र में डाल दिया, दैट्स इट। और अगर आम सिफत पे लीजिए तो फरिश्ते सारे काम अल्लाह के हुक्म से करते हैं, आंधी है, तूफान है, बारिश है, सब अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से करवाते हैं। अब्दुर्रहमान बिन साबित कहते हैं कि दुनिया के कामों की तकबीर चार फरिश्तों के ज़िम्मे हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल और इसराफील। हवाओं और खुदाई लश्करों का इंतज़ाम जिब्राइल के ज़िम्मे है। बारिशों और खेती बाड़ी के काम मीकाईल के सपुर्द हैं। बहरोबर में रूहों को कब्ज़ करना इज़राइल की ज़िम्मेदारी है और इसराफील तमाम अहकाम इन तक पहुँचाते हैं। और मारूफ तो यही है कि इसराफील सूर में फूकेंगे। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसा डिसिप्लिन रखा है। मैं तो हर दिन इस चीज़ की अहमियत की कायल होती जा रही हूँ कि इस कायनात का निज़ाम जो इतना खूबसूरत चल रहा है उसके पीछे डिसिप्लिन है। कुरान पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या दिखना चाहिए, डिसिप्लिन कायम करने वाले या डिसिप्लिन तोड़ने वाले, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले या मजबूर करने वाले कि हमें एग्जेम्प्ट कर दो इस चीज़ से, मुझे जहाँ बैठना मुझे ना कोई रोके, मैं जब चाहूँ आऊँ जब चाहूँ नहीं, मेरा बच्चा इधर बैठे उधर बैठे मेरी मर्ज़ी, आ जाए ना आए कल आए, बस मुझे ना कोई कुछ कहे क्योंकि मैं कुरान की तालिब इल्म हूँ। ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। कुरान क्या सिखाता है हमें, डिसिप्लिन, दूसरों का हक लोगे, दूसरों की जगह लोगे, उम्मीद दिला के अपनी जगह से हट जाओगे, जो जिम्मेदारी दी उसको ऐन वक्त पे तोड़ दोगे। हर बंदा सोचे, यकीन कीजिए कि अगर हमें इस दुनिया में कामयाब होना है तो हमें मजमूई तौर पर अपने अंदर डिसिप्लिन की आदत लानी पड़ेगी। आज मुसलमानों में अगर कुछ कमी दिख रही है तो वो डिसिप्लिन की है। इखलास बहुत है, इल्म बहुत है, तकवा बहुत है, वरा बहुत है, नेकियों में भाग दौड़ बहुत है, अल्लाह के रास्ते में देना बहुत है, लेकिन डिसिप्लिन कम है। हम खुद को किसी खूंटी में बांधना नहीं चाहते। हम कहते नहीं मेरे लिए सब मामले अलग हैं, मैं सबसे अलग हूँ। हर बंदा अगर ये सोचता है ना कि मेरे साथ ना कोई मामला करे जो मैंने कह दिया बस अब चुप कर जाए नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, तो समझ ले कि वो खुद उस सिस्टम को तोड़ने वाला है। फल मुदब्बिराती अम्र, पिछली सूरत में भी हमने बात की, यहाँ भी आ गई, अल्लाह सिखा रहा है काम अच्छे करने हैं, नतायज अच्छे लेने हैं तो जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। आप सोचिए जिब्राइल ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है आज बारिश वो बरसा दें, चलो मीकाईल ही है ना, कोई बात नहीं आज चार लोगों की रूह उनसे निकलवा लेते हैं। कहीं आपको फितरत में ये डिसऑर्डर दिखता? हम कब कामयाब होंगे, जब हम ऑर्गेनाइज होंगे। इसलिए अब आपके साथ नई जगह की जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। दिन ब दिन आप अल्लाह से अब इस पे अपनी दुआ करें कि अल्लाह मुझे डिसिप्लिन कर, मुझे रूल्स को फॉलो करने ना, मुझे अपनी ज़ात पे 5 नमाजें अगर वक्त पे आ गई टाइम मैनेजमेंट खुद ही हो जाएगी। हर सोना जागना खाना पीना हमारा अगर वक्त पे आ जाता है, तरीके सलीके से आ जाता है, हमारे काम आसान हो गए। मैं कई ऐसी औरतों को जानती हूँ, स्टूडेंट्स भी होती हैं, वो कहती हैं 9 बजे हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है। भाई आपका कैसे ख़त्म होता है, लोगों का तो अभी शुरू नहीं हुआ। वो कहती हैं हम फजर के बाद सोते नहीं, फिर हम पहले बच्चों के टाइम से पहले हम खाना चढ़ा देते हैं, कोई बच्चों का नाश्ता करता है, बच्चे 7 बजे जाते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर हम सफाई करते हैं, खाना पकाते हैं, 9 बजे फारिग। मुझे अच्छी तरह याद है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कुछ शेयरिंग करते थे, क्योंकि अमेरिका में हमारी सारी क्लासेस मोस्ट ऑफ द टाइम 9 o'clock शुरू होती हैं, तो जिस तरह आप यहाँ शेयरिंग करते हैं वैसे ऑनलाइन वाले करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि हम यहाँ इस वक्त बैठे हैं हमारा पूरा घर चमक रहा है, खाना हमारा दोपहर का पका हुआ है, हमारे कपड़े धुल चुके हैं, कुछ नहीं, अब हमने इन 4 घंटों में फुली क्लास को मैनेज करना है। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि क्लास के पूरा होने से बच्चों के आने तक क्या करना है, कोई हैसल नहीं कुछ नहीं। यकीन करें एक स्टूडेंट है मेरे दिल में, उनका नाम है लेकिन मैं लेना नहीं चाहती, अल्लाह ताला खुद ही सबको अजर देता है। छोटे बच्चे, 2 बच्चे उसके थे पहले भी, छोटे छोटे, मतलब ऐसे ही मुझे लगता है कि 1-1.5 साल का फ़र्क होगा, उनके साथ भी वो एक्टिव थी, बेहतरीन स्टूडेंट क्लास की, तजवीद बेहतरीन, पढ़ना बेहतरीन, सब कुछ। फिर उसने कहा मुझे काम दें काम दें, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों वालों को ना काम दें, उसने ज़बरदस्ती एक ऐसा काम लिया जो बिल्कुल उसने कभी नहीं किया हुआ था, टेक्निकल काम था। फिर उसने कहा मुझे सिखाएं, मैं जाती हूँ मेरा सदका जारिया बने, मेरा सदका जारिया बने, एडिटिंग करती हैं वो आजकल वॉइस की, कोई कंप्यूटर लिटरेट नहीं, उन्होंने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था। खैर उनको ट्रेनिंग वीडियोस बाकियों की तरह दी। इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि आधी से ज़्यादा हमारी जो ऑडियोज रोज़, अब देखिए इतनी ऑडियोज हैं, पिछली पड़ी हज़ारों फाइलें पड़ी हुई इस वक्त हमारी बंद, कि जो ऑडिट हों तो वेबसाइट पर जाएं और लोगों को नफा आम हो। और जितनी हो रही हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बिग हिस्सा इस लड़की, फिर इसके साथ दूसरी, ये एक थी फिर दूसरी, 3 दोस्त हैं एक ही सिटी से हैं, उन तीनों ने इस वक्त 90% एडिटिंग का काम संभाला हुआ। हमने उसको इंचार्ज किया। अब जो नया बंदा आता है एडिटिंग के लिए, ये उनको ट्रेन करती हैं और एक पूरा जाल बन चुका है। मुझे तो हैरत होती है सुन सुन के कि कौन कहाँ कहाँ बैठ के ये एडिटिंग कर रहा है, कि एक इंसान जिसने कभी ना किया। फिर इसी जिसकी कहानी सुना रही हूँ बीच में इसकी, फिर ये प्रेग्नेंट हो गई। मुझे लगा, मैंने कहा भी ये गई, क्योंकि प्रेगनेंसी से तो मेरा दिल ही डूबता है, क्या अब ये औरत अल्लाह ही इसको काम का रखे तो रखेगा, ये नहीं आएगी। पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल वैसी उसने क्लास ली है, पूरा उनका कोर्स था। फिर उसकी बच्ची हुई, बच्ची के शायद 2-3 दिन जो हॉस्पिटल में रही है वहाँ से भी क्लास सुन रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे गम था, मेरे कान मुंतज़र थे कि अब मुझे जो भी कोऑर्डिनेटर उन्होंने कहना है जी वो अब एडिटिंग नहीं कर पाएंगी क्योंकि छोटी बच्ची है। आज तक भी हो रहा है। फिर मेरी एक दफ़ा उससे बात हुई तो मैंने कहा आपको बच्ची के साथ मुश्किल होती है? कि नहीं उस्ताद, कोई मुश्किल नहीं होती, मेरी बच्ची मुझे तंग नहीं करती, मेरे साथ बैठी होती है, कुछ नहीं होता। यानी मैं हैरान हूँ कि मुझे रश्क आता है कुछ लोगों पे, वो इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमेटिक, टिक 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 टिक, ये हो गया ये, और वो खुश, वो परेशान नहीं, स्माइल। बहुत सारे लोग आप लोगों में भी होंगे, हर जगह होंगे, लेकिन वाकई मैंने देखा है कि जो लोग उलझे रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो डिप्रेस रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में उलझे ही उलझे, वो ऑर्गेनाइज नहीं होते। आजमा के देख लें, जितना ऑर्गेनाइज होते जाएंगे आप अपने ही घर में खुश होंगे। आपकी अपनी रखी हुई चीज़ नहीं मिल रही किचन में, आपने कहाँ खुश रहना? आप कपड़े पहनने लगे हैं, आपको कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं मिलती, आपके पास शमीज़ नहीं है, आपके पास दुपट्टा नहीं है, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए अब कुरान के बाद इंशाल्लाह जो अगला कोर्स करना है उसमें आपको ये चीज़ें भी सिखानी है, कैसे मैनेज करना है। अभी अगर आप इस पढ़ाई के कोर्स को अपनी ज़िंदगी के साथ मैनेज कर पाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे आप सब कुछ कर लेंगे, और अगर इसमें रोते रहें अगले में नहीं आएंगे। ये भी बता दूँ, आपके घर वाले भी दिन गिन रहे होंगे और आप भी, कि कब इससे अल्लाह ताला हमारी जान आफियत में करे और उसके बाद हम दोबारा अपनी ज़िंदगी में जाएं। कुछ भी नहीं होगा। कल मैंने कितनी प्यारी सुनी बात के वर्क एक्सपेंड विद द एक्सपेंशन ऑफ टाइम। क्या मतलब है? कि जब हमें वक्त ज़्यादा मिल जाता है ना किसी काम के करने के लिए तो काम भी लटक जाता है। वही काम जो एक घंटे में हम कर सकते हैं, क्योंकि मेहमान घर से चल पड़े हैं, 4 सालन तो बन ही जाते हैं घंटे में चावलों के साथ और जो भी झाड़ पोछ कर करा के आप एक घंटे में 10 लोगों का खाना 20 का पका लेते हैं। वही अगर आपको पहले बताओ ना कि नेक्स्ट वीक मेरे घर दावत है जिसमें 10 लोग आ रहे हैं, तो 2 वीक आपका दिमाग दावत दावत, मैंने प्याज छीलना है, मैंने लहसुन छीलना है, मैंने ये करना है, मैंने गोश्त मंगाना है, मैंने ये करना है, वो काम भी यूँ लटक जाता है। थोड़े वक्त में ज़्यादा काम, फल मुदब्बिराती अमरा, क्वालिटी टाइम। यौम तर्जुफुर राजिफा, जिस दिन थर थर आएगी थर थर आने वाली। दोनों में लफ्ज़ राजिफा रजफा पीछे कई बार पड़ चुके। एक कौम कौम समूद इसी रजफा से हलाक कर दी गई थी। फरमाया उस दिन थर थर आएगी थर थर आने वाली, ये नहीं कहा कि ज़मीन थर थर आएगी बल्कि थर थर आने वाली। एक होता है थर थर कांपना, एक होता है जिसका थर थराना और एक होता है थर थर कांपना, इसको रजफा कहते हैं। और राजिफा से मुराद जहाँ ज़मीन है। वो सारी चीज़ें जो आज इतनी खामोश हैं पहले सूर के आवाज़ के साथ ही थर थर आने लगेंगी, कि जिसमें लोग अपनी जगह से हटेंगे। अभी पहली के ऊपर फुर्सत नहीं आई, तक बौहर राजिफा, एक और झटका पड़ेगा, ये दूसरा सूर है, झटके पे झटका। राजिफा का लफ्ज़ रदीफ से रदफा, घोड़े पे पीछे जो शख्स बैठा होता है ना चलाने वाले के, उसको रदीफ कहते हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं ना, 2 लोग फ्रंट सीट पे बैठते हैं, बाकी पीछे बैठ, पीछे वाले जो अगलों के रदीफ हैं। इसी से लफ्ज़ काफ़िया और रदीफ है। शायद आपने कभी सुना हो पोइट्री में, शेर के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, काफ़िया और एक रदीफ। काफ़िया पहली चीज़ कफ़ा ऊपर एक दूसरे पे, और रदीफ पहले मिसरे के वजन पे होता है, तो शेर के दूसरे या उसके बाद के मिसरों को रदीफ कहते हैं। हदीस में एक सहाबी हैं, अपनी बात सुनाते हैं नबी सल्लम से और कहते हैं कि मैं रदीफ था नबी सल्लम का, यानी मैं आपके पीछे बिल्कुल घोड़े पे बैठा हुआ था और उस वक्त आपने मुझे ये बात इरशाद फरमाई। लेकिन यहाँ आप इसको ज़रा क़यामत के झटके के साथ सोचिए कि तत बहर वादिफा, एक के पीछे दूसरा। अभी पहले से नहीं बच सके होंगे कि एक और आएगा, कोहराम मच जाएगा, चारों तरफ आसमान सितारे सूरज चांद टकराने लगेंगे, हर चीज़ अपनी जगह से उखड़ेगी, ये दूसरा सूरज, और इसमें मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। कुलूबुन यौम इज़्म वाजिफा, कितने उस दिन खौफ से कांप रहे होंगे। वाजिफा वजफा से पीछे बात हो चुकी है इस पे। आंखों का क्या हाल होगा? अब सारुहा खाशिया, आंखें डर से झुकी हुई होंगी। बड़े बड़े शेर दिल लोग और बहादुर लोगों के दिल धड़कने लगेंगे। खौफ होगा किस बात का, पता नहीं बनना क्या। कुफार और मुनाफिकीन का ये हाल होगा, क्योंकि दिल में चोर होता है तो इंसान निगाहें नहीं मिला पाता, यही बात इधर होती है। इसके बरक्स जो मोमिन है वो मुतमईन होंगे। सूरत अल-अंबिया आयत 103 में हम पढ़ चुके, ईमान वालों के लिए ला यहज़ुनहुमुल फज़अल अकबर, ना गमज़दा करेगा उनको वो बड़ा फज़ा, व ततलक्काहुमुल मलाइका, और हाथों हाथ लेंगे उनको फरिश्ते और क्या कहेंगे, हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तूअदून, यही है वो तुम्हारा दिन जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था। इसीलिए कुछ दिलों की बात है, सारे नहीं, कुछ दिल।